ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। अददानस्त्रणं दन्तैरिदं याचे पुनः पुनः श्रीमदरूपपदाम्भोजौ धुलिः स्याम जन्म जन्मनि। वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की प्रातःकालीन भागवत कथा में, भागवत कक्षा में। तो आज हम पढ़ रहे हैं छठवां स्कंद चौदवां अध्याय श्लोक क्रमांक 54। लेकिन उससे पहले 54 में तात्पर्य है, तो उससे पहले हम 41 से लेके 53 तक हम इसको अनुवाद पढ़ लेंगे। कल 40 ही हुआ था ना? हाँ 40 ही हुआ। तो ध्यान 41 से, तो ध्यान से सुनिएगा अनुवाद 41वें का। यहां तक कि जो दासियां अपने पति की निरंतर सेवा करती हैं वे भी अपने पति का सम्मान पाती रहती हैं, अतः उनको किसी बात के लिए पश्चाताप नहीं करना पड़ता। किंतु हमारी स्थिति तो दासियों के समान है, अतः हम सर्वाधिक हतभाग्या हैं। तो टेस्ट लेने के लिए नहीं पूछ रहा, लेकिन सब पर्सपेक्टिव में आ जाएं, ये क्लास में आ जाएं, इसलिए पूछ रहा हूं। कौन कह रहा है ये? किसको बोल, किससे बात कर रहे हैं? और थोड़ा सा आपस में, और किसके किसके साथ उनका कंपटीशन है? बहुत अच्छा। वो रानी का नाम क्या है, किसी को याद हो तो? कृतदीति। धन्यवाद। बस यहाँ पे आ जाएं सब, इसलिए क्या होता है थोड़ा समय लगता है ना, इधर उधर दिमाग रहता है, तो क्लास में आ जाएं इसलिए पूछा मैंने, और कुछ नहीं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, अपने पति द्वारा अपेक्षित होने तथा कृतद्युति की गोद भरी हुई देखकर सभी सौतें द्वेष से अधिकाधिक जलने लगीं। द्वेष बढ़ जाने से रानियों की मति मारी गई। अत्यधिक कठोर हृदय होने तथा राजा की उपेक्षा को न सह सकने के कारण उन्होंने अंत में बालक को विष खिला दिया। अपनी सौतों द्वारा विष दिए जाने की घटना को न जानती हुई रानी कृतद्युति यह सोचकर कि उसका पुत्र गहरी निद्रा में सो रहा है, घर में इधर उधर विचरती रही। उसे पता न चल पाया कि वह मर चुका है। यह सोचकर कि उसका पुत्र बड़ी देर से सो रहा है, उस अत्यंत बुद्धिमान रानी कृतद्युति ने धाया को आज्ञा दी, हे सखी, मेरे पुत्र को यहां ले आओ। जब धाय उस सोते हुए बच्चे के पास पहुंची तो उसने देखा कि उसकी आंखें ऊपर की ओर उलट गई हैं। उसके शरीर में प्राण का कोई संचार नहीं है और उसकी समस्त इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं। अतः वह समझ गई कि बालक मर चुका है। यह देखकर वह तुरंत चिल्ला उठी, हाय, मैं मारी गई, और पृथ्वी पर गिर पड़ी। अत्यंत विक्षुब्ध होकर वह धाया अपने दोनों हाथों से अपनी छाती पीटने लगी और आर्त स्वर में जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी तेज आवाज सुनकर रानी तुरंत आ गई और अब वह अपने पुत्र के पास पहुंची तो देखा कि वह सहसा ही मर चुका है। अगाध शोक के कारण रानी मूर्छित होकर पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़ी कि उसके बाल तथा वस्त्र बिखर गए। हे राजा परीक्षित, रानी का जोर जोर से विलखना सुनकर रनिवास के सभी स्त्री पुरुष आ पहुंचे। समान रूप से संतप्त होने के कारण रोने लगे। जिन रानियों ने विष दिया था अपने अपराध को भली भांति जानती हुई वे भी झूठ मूठ रोने का ढोंग करने लगी। जब राजा चित्रकेतु ने सुना कि न जाने कैसे उनका पुत्र मर गया है तो वह प्रायः अंधा सा हो गया। पुत्र के प्रति अगाध स्नेह के कारण उसका विलाप जलती हुई अग्नि के समान बढ़ता गया और रास्ते भर वह भूमि पर लगातार गिरता पड़ता तथा लुढ़कता हुआ उस मृत बालक को देखने गया। अपने मंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों एवं विद्वान ब्राह्मणों से घिरा हुआ वह राजा वहां पहुंचा और उस बालक के चरणों पर अचेत होकर गिर पड़ा। उसके बाल तथा वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। जब दीर्घ श्वास लेते हुए राजा को होश आया तो उसके नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे और वह बोल नहीं पा रहा था। जब रानी ने अपने पति राजा चित्रकेतु को अत्यधिक शोकाकुल और अपने एकलौते पुत्र को मरा हुआ देखा तो वह अनेक प्रकार से शोक प्रकट करने लगी। इससे रनिवास के समस्त वासियों, मंत्रियों तथा समस्त ब्राह्मणों के हृदय की व्यथा बढ़ गई। रानी के सिर को सुशोभित करने वाली फूलों की माला गिर पड़ी और उसके बाल बिखर गए। उसके आंसुओं से नेत्रों में लगा अंजन धुल गया और कुंकुम चूर्ण से लेपित उसके स्तन भीग गए। पुत्र की मृत्यु पर शोक करती हुई उस रानी का दारुण विलाप कुरारी पक्षी के आर्त स्वर की तरह लग रहा था। अब ये श्लोक पे आ गए हम, 54 श्लोक, तो मेरे पीछे बोलिएगा। अहो विधात स्तमतीव बालिशो, च चलो इसका भी अनुवाद पढ़ लेते हैं ताकि भाव आए बोलने में. हे विधाता, हे सृष्टिकर्ता, तू निश्चय ही अपने सृष्टि कार्य में अनुभवहीन है, और क्योंकि पिता के रहते हुए तूने उसके पुत्र की मृत्यु होने दी और इस तरह से अपनी ही सृष्टि के नियमों के विपरीत कार्य किया है. यदि तू नियम भंग करने पर ही तुला है तो तू निश्चय ही समस्त जीवात्माओं का शत्रु है और निर्दयी है. तो एक मां बोल रही है, तो एक तरीके से ठीक है, लेकिन फिर प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेंगे और क्या गलती है उसमें देखेंगे. तो श्लोक को दोहराइएगा फिर से. अहो विधातस्त्वमतीव बालिशो, अतीव बालिशो मतलब तुम बहुत ही ज्यादा बच्चे हो. विधाता तुमको, तुम बेवकूफ हो, तुमको कुछ अक्ल नहीं है. यस्त्वात्म सृष्टि अप्रतिरूपम इहसे, परेनु जीवत्यपरस्य यामृतिर् विपर्ययश्चेत्त्वमसी ध्रुवः परः. शब्दार्थ ओह शोक में विधातः, हे विधाता ईश्वर, तुम अतीव अत्यंत बालिशः मूर्ख, यह जो तू निसंदेह आत्मसृष्टि अपनी स्वयं बनाई हुई सृष्टि के अप्रतिरूपम प्रतिकूल ईहसे कार्य करते तथा इच्छा करते हैं, परे पिता या अन्य बड़ा नु निसंदेह जीवती जीवित रहता है, अपरस्य बाद में जन्म लेने वाले का, या जो मृति ही मृत्यु विपर्य विपरीत चेत, यदि तुम असि हो ध्रुव निसंदेह परह वैरी या शत्रु. फिर से अनुवाद. हे विधाता, हे सृष्टिकर्ता, तू निश्चय ही अपने सृष्टि कार्य में अनुभवहीन है क्योंकि पिता के रहते हुए तूने उसके पुत्र की मृत्यु होने दी और इस तरह से अपनी ही सृष्टि के नियमों के विपरीत कार्य किया है. यदि तू नियम भंग करने पर ही तुला है तो तू निश्चय ही समस्त जीवात्माओं का शत्रु है और निर्दयी है. तो इसमें एक पॉइंट, ये रानी नहीं, अगले श्लोक में, कल के श्लोक जो कल होगा उसमें उन्होंने खुद ही नोट किया है, वही अपने को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं. अगले उसमें बोल रही हैं कि आप बोल सकते हो कि ऐसा कोई तो नियम है ही नहीं, और ये सच्चाई है. ये जो बोल रही है कि नियम है आपकी सृष्टि का कि पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, नियम कहां लिखा है? ना भगवदगीता में, ना भागवत में, ना चैतन्य चरितमृत, ना वेदों में, ऐसा कोई नियम नहीं है. लेकिन आवेश में आके किस तरीके से एक बद्ध जीव जो है वो कैसे भगवान को ही दोषी ठहराता है अपने किए पे. जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, प्रभुपाद वही बोलेंगे तात्पर्य में कि बच्चा, असल में वो बोल रही कि बच्चे, तुम बच्चे हो, तुम अनुभवहीन हो, लेकिन असल में जीव जो बद्ध जीव है वो अनुभवहीन होता है. उसको पता नहीं कर्मिक रिएक्शन क्या है, कर्म का फल कैसे मिलता है, उसने क्या किया है, पहले क्या हुआ है, वो यही जन्म को देखता है और पहले क्या हुआ है वो तो नहीं मालूम उसको. और ब्लेम किसको करता है? जैसे छोटा बच्चा होता है ना, पिताजी बचपन में कभी कभी सब्जी खाने को बोलते हैं, बच्चे को सब्जी नहीं खानी है, हमेशा दही खाना है, मीठा कुछ खाना है, तो पिताजी उसको झापड़ मारते हैं तो बोलते हैं बहुत निर्दयी हो, कुछ मालूम है क्या, मेरे को दही खाना है, मेरे को मीठा खाना है, मेरे को दूध खाना है और तुम सब्जी। लेकिन बड़े होने के बाद उसको पता चलता है करेला जो पिताजी ने बचपन में जबरदस्ती खिलाया, मार के खिलाया, उसके कारण उसका खून साफ है। और करेले की आदत पड़ गई या नीम की आदत पड़ गई तो खून अब साफ रहता है, नहीं तो डायबिटीज होके कब का मर चुका होता। तो बचपन में नहीं पता, आगे चल के पता हो जाता है। लेकिन उसी प्रकार से बद्ध जीव जो है वो एक छोटा बच्चा है, वो जब कुछ दुख आता है तो तुरंत भगवान के ऊपर ब्लेम करने लगता है। तो अभी तात्पर्य सुनेंगे। जब बद्ध जीव की पराजय होती है तो वह इसी प्रकार से विधाता को धिक्कारता है। कभी कभी वह श्री भगवान पर कुटिल होने का दोषारोपण करता है, क्योंकि कुछ व्यक्ति सुखी हैं और कुछ नहीं। यहां पर रानी परमेश्वर को अपने पुत्र की मृत्यु के लिए दोष देती हैं। सृष्टि के नियमानुसार पिता को पहले मरना चाहिए, तब पुत्र को। यदि परमेश्वर अपने सनक से इन नियमों को बदल देता है तो उसे दयालु नहीं माना जा सकता, वरन उसे मनुष्यों का शत्रु मानना चाहिए। वास्तव में विधाता नहीं वरन बद्ध जीव ही अनुभवहीन मूर्ख है। उसे इसका ज्ञान नहीं है कि सकाम कर्म के सूक्ष्म नियम किस प्रकार कार्य करते हैं। वह इनको जाने बिना अज्ञानतावश पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आलोचना करता है। तो ये हुआ तात्पर्य। और ये प्रसंग जो है बड़ा क्या बोलते हैं, मतलब दिल को द्रवित करने वाला या दुख भरा प्रसंग है। और हम ज्यादातर हम में से जो बैठे हैं उनके जीवन से काफी तालमेल खाता है। हमारे जीवन में भी बहुत दुख आए हैं, बहुत कुछ हुआ होगा, बहुत सारी चीजें हुई होंगी जो कि हमको पसंद नहीं थी लेकिन हुआ। और बहुत सारे यहाँ पे जो बैठे हैं वो मैं कृपा करके हाथ उठाने को बोलूंगा थोड़े समय के बाद, क्वेश्चन पूछूंगा। बहुत सारे इसलिए ही आए होंगे कि बहुत दुख आए जीवन में, इसलिए अब भगवान की शरण में आ गए। कितने हैं? अगर नहीं है तो बोल लीजिए नहीं है। तो एक बार भक्त बोल रहे थे, चार प्रकार के लोग भक्ति में आते हैं, आप सबको मालूम है। लेकिन वो बोले कलयुग में एक ही प्रकार के आते हैं। वो क्या? नहीं, कलयुग में, वो बोले उनके बोलने का तरीका था, कलयुग में चार प्रकार के लोग आते हैं, आर्तो और आर्तो। ज्ञानी वानी कोई होता ही नहीं, ज्ञानी वानी तो भूल जाइए। और कुछ लोग जिज्ञासु होते हैं, अरे इस्कॉन में इतना सब गड़बड़ चल रहा है, क्या है इतना बहुत कुछ सुनने में आ रहा है पेपरों में, दम मारो दम वगैरह वगैरह। कल ही यहाँ पे कॉलेज का प्रोग्राम हो रहा था, बहुत साल के बाद वो दम मारो दम पिक्चर का गाना लगाया इन्होंने बॉन महाराज कॉलेज में, वो जो फेस्ट होता है ना स्टूडेंट्स का फेस्ट, तो दम मारो दम गाना लगा के बच्चे नाच रहे थे। एनीवेज, तो ये कुछ जिज्ञासु लोग होते हैं लेकिन वो भी आर्त ही होते हैं। तो इससे बहुत संबंधित है। अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि नहीं, उससे पहले थोड़ा और कुछ बोलूंगा। दोषारोपण जब करते हैं तो जैसे बच्चे को आगे क्या हो रहा है, जैसे मैंने उदाहरण दिया था करेले का, तो बच्चे को आगे क्या होना है इसका कुछ ज्ञान नहीं होता। वैसे ही हमारे जीवन में भी क्या होता है उसका हमको ज्ञान नहीं होता। इसके लिए एक बड़ा अच्छी स्टोरी सुनी थी मैंने, अच्छी स्टोरी है, कहीं पढ़ी थी, इंटरनेट पे पढ़ी थी या कहां पे पढ़ी थी, और उसके कई वर्जन बाद में सुने। एक बार क्या होता है, एक आदमी होता है, उसको माउंटेन क्लाइंबिंग, क्या बोलते हैं, प्रभु जी माता जी इस तरफ बैठी हैं, आप इधर आ जाइए, पेंट शर्ट में जो है, तो कहां था मैं, हाँ, तो माउंटेन क्लाइंबर होता है, उसका बड़ा शौक होता है कि अलग अलग पहाड़ों पर चढ़ने का। लेकिन उसको एक अहंकार भी होता है कि मैं चढ़ूंगा पहाड़ पे, अकेला चढ़ूंगा, मैं दिखा के रहूंगा। कि ज्यादातर क्या होता है, माउंटेन क्लाइंबर ऐसी जगह पे चढ़ते हैं जहां पे गार्ड होते हैं, गार्ड्स को इन्फॉर्म करके कुछ लोग भी उनके साथ जाते हैं ताकि कुछ क्या बोलते हैं, मिसहैप हो जाए, अनहोनी हो जाए तो उनको बचा लिया जाए। लेकिन ये बड़ा अहंकारी था, मैं चढ़ के दिखाऊंगा बिना किसी सपोर्ट के, ठीक है चल चल पड़ा। तो क्या हुआ, चढ़ते चढ़ते रात हो गई, तो ऊपर चढ़ा, ठंडी हो रही थी, उसको कुछ दिखा नहीं, और आपको पता होगा यहां पे रस्सी बांधते हैं वो लोग कमर में और फिर ऊपर फेंकते हैं एक, और ऊपर जब जम जाता है तो फिर अपने पैर को हटाते हैं, फिर एक पैर को हटाने के बाद उसको जमा लेते हैं, फिर दूसरे पैर को हटाते हैं। तो ऐसा करते करते वो काफी ऊपर चला गया, फिर ऊपर एक जगह पे उसका पैर स्लिप हो गया, लेकिन रस्सी अटकी हुई थी ऊपर, पैर स्लिप हो गया, नीचे गिर गया, वो ऊपर से नीचे धन, लेकिन रस्सी के कारण बच गया, बच गया। तो अब वो व्यक्ति निपट नास्तिक था, कभी भगवान को याद नहीं किया था, कभी कुछ नहीं, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो और किसको याद करेगा, कोई तो है नहीं, तो बताया भगवान बचाओ 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 बचाओ, बहुत जोर से चिल्लाया। जब जोर जोर से चिल्लाया भगवान बचाओ, तो आवाज आई आकाशवाणी में, क्या तुम सचमुच चाहते हो मैं बचाऊं तुम्हें? बोला हां चाहता हूं। क्या तुम्हें विश्वास है मैं बचा सकता हूं? हां मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है। तो बोला ठीक है, फिर मैं जैसा कहूंगा वैसा करोगे? हां करूंगा। तो बोले तुम्हारी कमर में वो जो चाकू है, वो लोग चाकू रखते हैं ऐसे खोदने के लिए और फिर हाथ पकड़ने के लिए पैरों के लिए, तो चाकू जो है उसको निकालो। निकाल लिया। बोले अभी वो जो रस्सी तुम्हारी कमर में बंधी है उसको काट दो। पागल कुत्ते ने खाया है मेरे को, रस्सी काट दूं तो कहीं नीचे गिर जाऊंगा। बोला जरूर कोई साजिश है, कोई मेरे को नीचा दिखाना चाहता है, कोई तो और बोल रहा है, भगवान भगवान कुछ नहीं है। तो उसने रस्सी नहीं काटी। और सुबह पेट्रोलिंग के लिए पुलिस वगैरह आई तो उन्होंने देखा जमीन से केवल 10 फुट ऊपर एक आदमी झूलता हुआ मर गया, क्योंकि ठंडी था तो ठंडी में वो ठिठुर के मर गया। अब 10 फुट नीचे अगर गिर भी जाता तो क्या होता? ज्यादा तो नहीं, एक छोटा जाती कुछ पैर में टूट जाता, मरता तो नहीं, लेकिन उसने तो भगवान को पता है, इसको अंधेरे में दिखा नहीं। उसी प्रकार बद्ध जीव, हम अंधेरे में, इस ब्रह्मांड को अंधकार बोला गया है और इसमें एक सूरज की एक टिमटिमाती रोशनी डाली है, बस हमको लगता है सूरज बहुत बड़ा है, लेकिन सूरज भगवान की, कई जगहों पर प्रभुपाद समझाते हैं, भगवान की जो ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर में से निकलती है आध्यात्मिक जगत में, वो आध्यात्मिक जगत की वो ब्रह्म ज्योति का एक थोड़ा सा भाग लेके सूरज दे रहा है हमको। तो अंधकारमय ही है, और उसमें और भी हमारी आंखों पे अंधकार पड़ा है, बुद्धि में अंधकार पड़ा है, हमें कुछ भी नहीं मालूम। और मॉडर्न टाइम्स में अभी तो स्कूल कॉलेज या पेपरों में या घर पे माँ बाप कुछ नहीं बताते। अगर कोई बच्चा थोड़ा जिज्ञासु हो भी जाता है, भगवद गीता घर पे ले आया, आप सबको एक्सपीरियंस रहा होगा, अगर कॉलेज में आप घर पे भगवद गीता ले आए तो माँ बाप डर जाते हैं, अरे भाई ये क्या करेगा, ये तो होगा अभी साधु हो गया, नहीं 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 बेटा इसको अभी बाद में हमारी उम्र में आ जाओ तब पढ़ना। ओ बच्चा पूछते मम्मी आप तो आपकी उम्र में हो ना कभी भगवद गीता पढ़ी? मम्मी बोलती दादाजी की उम्र में जाऊंगी तो पढ़ूंगी। तो हर जगह वही चलता रहता है, आगे बढ़ाते रहते हैं, ढकेलते रहते हैं, ढकेलते रहते हैं, इसको अर्जेंसी में कभी नहीं लेते। तो ऐसी समस्या में हम, हमारी बुद्धि अंधकार में, कर्म किसी को मालूम ही नहीं। प्रभुपाद ने एक बार बहुत साल पहले यहाँ पे क्लास में बताया था, एक बार प्रभुपाद बोले लेक्चर में, बोलते हैं कि मैं जब स्कॉटिश चर्चेस कॉलेज में थे, प्रभुपाद कॉलेज में, तो वहां पे उनके प्रोफेसर सब क्रिश्चियन थे, वो क्रिश्चियन प्रोफेसर आते थे, भगवद गीता उठाते थे और बोलते थे देखो हमारी बाइबल कितनी प्रैक्टिकल है, ठीक है, अभी क्या होना है क्या करना है वो बताती है, ये तुम्हारी भगवद गीता बोलती कर्म, फिर कर्म के इतने विटनेस हैं, कौन विटनेस है बेटो, कौन है विटनेस, तुमने अभी पिछले जन्म में कुछ कर्म किया, किसने देखा, तो खत्म हो गया, किसने देखा? तो प्रभुपाद बोलते हैं कि उस समय हमको बुद्धि नहीं थी इसलिए हम डिफेंड नहीं कर पाए, आज मिल जाए तो डिफेंड कर देंगे। तो ये समस्या है, समस्या क्या है, लोग कर्म को नहीं मानते और भगवान को मानते, कई लोग ऐसे भी मिलेंगे कर्म को नहीं मानते भगवान को मानते, अच्छा बुरा कर्म नहीं मानते लेकिन भगवान मानते हैं, ये भगवान, भगवान के विधान को जो नहीं मानता भगवान को कैसे मानता है? बच्चा पिताजी की आज्ञा नहीं सुनता, नहीं मैं लेकिन पिताजी को मानता हूं, पिताजी की रोज आरती करता हूं, सुबह सुबह उठ के पैर उठ पढ़ता हूं, लेकिन पिताजी बोलते हैं ये कर वो कर तो बकवास है, मेरे को जो करना है मैं करूंगा, ये कोई पिताजी का आज्ञाकारी है पुत्र है नहीं, वो पिताजी को मानता ही नहीं है, पिताजी उसके लिए मरे समान है, सिर्फ नाम के लिए करता है, पिताजी के पैर छूता है। तो यही हालत है आजकल लोगों की कि अंधकार में, और यही यहां पे जो रानी बोल रही है या इससे पहले जो दूसरी रानियों ने जो ईर्ष्या की, ईर्ष्या करने की कोई जरूरत ही नहीं है, इतना छोटा सा जीवन है। मैं बोल तो रहा हूं लेकिन ईर्ष्या कूट कूट के भरी हुई है रगों में, ठीक है। इस बद्ध जीवन में कोई आया है तो कोई ये नहीं बोल सकता मैं ईर्ष्यालु नहीं हूं, ठीक है। कभी भी दो भक्तों का झगड़ा होता है, एक भक्त दूसरे को बोलता है तू ईर्ष्यालु है, दूसरा बोलता है तू ईर्ष्यालु है, नहीं दोनों को बोलना है हम दोनों ईर्ष्यालु है यार। इसके लिए उपाय एक ही है, वो क्या है, हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम कलो नास्त्यो 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 गतिरन्यथा। ईर्ष्या तो भरी हुई है, अब बोल के क्या फायदा, ठीक है। हाँ यार तू ईर्ष्यालु है मैं भी ईर्ष्यालु हूं, लेकिन अभी झगड़ा करेंगे, काम खत्म कर, झगड़ा खत्म होने के बाद वापस हरिनाम करेंगे, क्योंकि हरिनाम से ही झगड़े खत्म होंगे, ठीक है, और कैसे भी नहीं हो सकता। यहां पे जो इनका हाल है, ये जब तक अंगिरा मुनि और नारद मुनि अगले अध्याय में लेक्चर नहीं देंगे तब तक इनका हाल सुधरेगा नहीं, ये रानियों का। ईर्ष्या करती रहेंगी, एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे को मारेंगी, दूसरे के बाद तीसरे को मारेंगी, तीसरे के बाद चौथे को मारेंगी, ठीक है, मारती रहेंगी और कुछ नहीं होगा, और राजा ऐसे ही विलाप, बेचारा बिलक बिलक के विलाप करता रहेगा। तो ये अंधकार के कारण प्रभुपाद बहुत करुणा से चाहते थे, प्रभुपाद अमेरिका जाने से पहले ही जब भारतीय विद्या भवन बॉम्बे में प्रभुपाद बोलते हैं, वहां पे वापस आए अमेरिका के बाद आए तो वहां का वहां पे एक लेक्चर दिया प्रभुपाद ने, उस लेक्चर में प्रभुपाद बोलते हैं मैं यहीं पे इंडिया छोड़ने से पहले अमेरिका जाने से पहले यहाँ पे लेक्चर दिया था, और ये आप लोगों ही मिनिस्टर्स को दिया था, कुछ मिनिस्टर्स वहां पे बैठे थे, और आप लोगों से मैंने तब रिक्वेस्ट की थी आपका एक लड़का मुझे दे दो, एक लड़का, उसको मैं ब्राह्मण बनाऊंगा। इससे क्या दिखता है, प्रभुपाद गुरुकुल शुरू करना चाहते थे, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, क्योंकि जिस देश देश की सभ्यता या देश की क्वालिटी निर्भर करती है उसकी शिक्षा प्रणाली पे। शिक्षा मूल चीज है, बचपन से जो मिलता है, सबने सुना है गीला बांस को मोड़ा जा सकता है, कड़क हो गया तो टूटता है, तो बचपन से जो शिक्षा मिली है, अब हम बुढ़ापे में, मैंने 24 साल में शुरू किया, कई लोग 50 साल में आए, हम सुधरना बड़ा मुश्किल है, टूट जाएंगे, कई कॉन्सेप्शन वैसे ही रखते हैं, कई चीजें नहीं ये हाँ है प्रभु जी आप बोल रहे हो लेकिन, प्रभु जी हाँ आप बोल रहे हो लेकिन, हाँ स्वामी जी ने बोला लेकिन, हाँ प्रभुपाद ने बोला लेकिन, ये जो लेकिन है ना, ये लेकिन शब्द हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, ये लेकिन से हम सब कुछ खत्म कर देते, पूरा लेक्चर लिया सुना, सब प्रवचन सुना, लास्ट में लेकिन हद हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बोल दिया व्यक्ति ने, अब उसके आगे बच्चे ने बोल दिया लेकिन, मतलब सुन समझ लो कि एक्सक्यूज के ऊपर एक्सक्यूज मारेगा, लेकिन बोल दिया हाँ ठीक है भाई मत कर। अर्जुन ने, आप ध्यान देंगे, अर्जुन ने पूरी भगवद गीता में भगवान ने जब भी बोला अर्जुन ने प्रश्न पूछे, लेकिन लेकिन नहीं बोला एक बार भी, परंतु लेकिन ऐसा कोई शब्द नहीं था, हाँ बोला या ना बोला या नहीं समझा, ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, लेकिन समझ गया अब लेकिन नहीं करूंगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन जब नहीं है तो ऐसे सब आरोपण करते हैं। अभी एजुकेशन सिस्टम क्या है और इसको कैसे देना चाहिए, इसमें भागवतम में बोला है अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य अजानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। इसी के लिए भागवतम की रचना जो लर्नेड स्कॉलर व्यासदेव है उन्होंने की, क्यों, उसमें बोलते हैं लोकस्य अजानतो विद्वांस, ये जो अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे, अनर्थ मतलब हमारी जो मटीरियल मिजरीज हैं, असल में आत्मा को ये जो दुख, इसमें जो दुख का बखान किया है कि बच्चा मर गया उसके कारण इतना दुख हो रहा है, असल में अगर कोई समझे मैं आत्मा हूं, इसलिए भगवान भगवद्गीता शुरू कैसे करते हैं, जब बोलना शुरू करते हैं पहला चीज बोलते हैं अर्जुन तुम गधे हो, क्यों, क्योंकि पूरे गुरुकुल में पढ़े कि बार बार बोला गया तुम आत्मा हो शरीर नहीं, और फिर तुम शरीर के लिए विलाप कर रहे हो। तो अगर कोई इसमें स्थित हो जाए कि मैं आत्मा हूं, दुख आएंगे तो भी बोलेगा क्या फायदा दुख करके, क्योंकि आत्मा एक्चुअली दुखी होता ही नहीं, आत्मा को भौतिक चीजें स्पर्श नहीं कर सकती, ना तो आत्मा को काटा जा सकता, ना जलाया जा सकता, ना मारा जा सकता, आत्मा मरता भी नहीं, आत्मा केवल आविर्भाव होता है और तिरोभाव होता है हर आत्मा का, जैसे भगवान नहीं मरते आत्मा भी मरता नहीं, हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं बस, लेकिन विलाप करते हैं, क्यों? क्योंकि अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। अनर्थ, ये जो मटेरियल मिजरीज हैं, ये सुपरफ्लुअस हैं, और अंधकार के कारण लोकस्य अजानतो विद्वांस, क्योंकि लोगों को अज्ञान है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है, इसलिए ये दुखी होते हैं। एक सपने में पड़े हैं हम, और सपने में हम सोच रहे शेर हमको खाएगा, शेर खाएगा, प्रभुपाद कई बार उदाहरण देते, और रो रहे शेर खाएगा, मम्मी बाजू में बोल रही बेटा उठ, कोई शेर नहीं है, नहीं शेर खा जाएगा मम्मी, शेर खा जाएगा, अरे नहीं शेर है ही नहीं। वैसे हम भयभीत हैं इतनी समस्याओं में, सब कुछ हमसे कोई उसका नाता नहीं है, लेकिन हमको समस्या लगती है। अब इट इज इजियर सेड देन डन, ठीक है, बोलना आसान है, करना बड़ा मुश्किल, लेकिन बार बार बोलते रहेंगे, बार बार सुनते रहेंगे, तो एक दिन बल्ब जलेगा। अभी तो हमारी ट्यूबलाइट फ्यूज है, धीरे धीरे बल्ब जलेगा। तो इसके लिए लोकस्य अजानतो विद्वान, और लोगों को एक और चीज पता नहीं है कि भक्ति योग मदोक्षजे, अगर ये अनर्थों को खत्म करना है मटेरियल मिजरी, एक ही तरीका है, भक्ति योग में लगो, और ये डायरेक्ट तरीका है। बाकी योग पद्धतियां जो हैं वो इनडायरेक्ट है, पर भक्ति योग जो है डायरेक्ट मटेरियल मिजरीज को खत्म कर सकता है। और क्योंकि लोगों को यह पता नहीं है, इसलिए लोकस्य अजानतो विद्वान चक्रे सात्वत संहिताम, चक्र मतलब लिखा, किसने क्या लिखा, भागवत सात्वम, सात्वत संहिता मतलब जो परमहंसों की संहिता है, उसको व्यासदेव ने हम पे कृपा करके लिखा, और इसकी एजुकेशन देना, इसलिए प्रचार पे बहुत फोकस दिया है चैतन्य महाप्रभु ने, प्रभुपाद ने, प्रचार करना बहुत जरूरी है अपने अपने स्तर पे। हर कोई 3000 लोगों को लेक्चर नहीं दे सकता, ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर, एक्चुअली लेक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक महाराज बोल देते कि व्यासासन पे क्या बोलते हैं वो लोग नहीं देख रहे, व्यासासन से उतरने के बाद क्या करते हैं वो देख रहे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बोलते हैं, बेटर देन प्रिसेप्ट इज एक्शन, इज बेटर देन प्रिसेप्ट, मतलब आपने क्या बोला उससे ज्यादा महत्वपूर्ण आपने क्या किया, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आचार ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रचार लेकिन बहुत जरूरी है, अपने जीवन में उन चीजों को अगर पालन करेंगे जो शास्त्रों की चीजें हैं, भक्ति योग के प्रिंसिपल जो है उनको पालन करेंगे, तो वो ही अपने आप में प्रचार करता है। तो अब यहां पे नेक्स्ट सेक्शन, ये हमारे डिस्कशन का, एक तो हमने पहला चर्चा कर ली कि क्यों हम दुखी हैं, क्यों लोग दुख मनाते हैं, कारण क्या है, एजुकेशन सिस्टम, लैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम। अब सेकेंड पार्ट में मैंने जैसे पहले बोला था कि ये बद्ध जीव की ये हालत है, लेकिन शुद्ध जीव, ये जो भक्ति योग का प्रोसेस है, ये भक्ति योग प्रोसेस करने के बाद हम कैसे बनते हैं, हमारे में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसके लिए दो उदाहरण, एक तो यही चित्र केतु का उदाहरण, आपको पता होगा ये प्रसंग किस तरीके से चालू हुआ है, वृत्रासुर की स्टोरी सुनाई थी इंद्र को, इंद्र के साथ युद्ध का, और अचानक परीक्षित महाराज ने पूछा, हे शुकदेव गोस्वामी, ये वृत्रासुर एक राक्षस होने के बावजूद इतना अच्छा भक्त कैसे था? क्योंकि अगर आपको डायलॉग्स याद हो, वृत्रासुर ने जो इंद्र को बोले, इंद्र लड़ रहे थे, इंद्र के हाथ में वज्र था, वज्र भगवान ने दिया था उनको, बोल के दिया था ये वज्र वृत्रासुर को मारेगा, इतना होने के बावजूद, भगवान से सुना, ब्रह्मा जी से सुना, वज्र अपने हाथ में होने के बावजूद, दधीची मुनि की तपस्या की उसमें शक्ति होने के बावजूद, इंद्र को विश्वास नहीं था, मैं छोड़ूंगा और नहीं मरा तो यह आखिरी चीज भी चली गई तो वृत्रासुर तो मेरी जान ले लेगा, तो छोड़ नहीं रहा था वृत्रासुर इंद्र, और वृत्रासुर तब बोल रहा था, वृत्रासुर ने सिर्फ सुना था, देखा नहीं था, भगवान ने बोला नहीं था उनके सामने, सिर्फ सुना था, उनको पूरा विश्वास था कि भगवान ने दिया है, मेरी मृत्यु इससे होगी, जबकि वृत्रासुर के सामने इंद्र की पूरी सेना नहीं के बराबर थी, ऐसे कुचलते हुए जले जा रहे थे, वो डिस्क्रिप्शन अगर याद हो, लेकिन वृत्रासुर को इतना विश्वास, इंद्र को बोलते हे इंद्र, ये भगवान का दिया हुआ है, मारो मुझे, और इसमें तुम्हारा भी फायदा है, मेरा भी फायदा, तुमको वो मिलेगा जो तुम चाहते हो, तीन लोक का राज, और मुझे वो मिलेगा जो मैं चाहता हूं, ये राज को छोड़ के एक विष्ठा जैसे मैं त्यागते हुए ये ब्रह्मांड के राज को मैं चला जाऊंगा भगवान के चरण कमलों की शरण में, तो कृपा करके मारो। जब ये सुना परीक्षित महाराज ने, परीक्षित महाराज विस्मित हो गए, ये है कौन वृत्रासुर, मैं नहीं मान सकता ये राक्षस है। तब ये चीज चालू होती है कि चित्रकेतु महाराज थे, और चित्रकेतु महाराज की पूरी स्टोरी बताते हैं ताकि हमको पता चले ट्रांसफॉर्मेशन भक्ति योग कैसे करता है। एक निपट आसक्त व्यक्ति जो एक अपना बच्चा मर गया तो गिर रहा है, मर रहा है, क्या हो गया, ऐसे ऐसे विलाप कर रहा है जैसे औरतें भी नहीं करती। और एजुकेटेड आदमी, ठीक है, मतलब कोई बोलेगा अरे चूड़ी पहनी हुई है क्या ये, मतलब भारतीय मर्दाना भाषा में बोलते हैं चूड़ी पहनी हुई है, ऐसे रो रहा है, ठीक है, तो वो ऐसे गिर रहे, रो रहे, आंसू बह रहे, मूर्छित हो गए, होश नहीं है, और बिल्कुल बदल गए बाद में कुछ ही समय में। अंगिरा मुनि उनको लेक्चर देते, फिर अंगिरा मुनि उनको एक मंत्र देते हैं, मंत्र का वो बहुत विश्वास से, मंत्र का उन्होंने केवल एक हफ्ते जाप किया, केवल एक हफ्ते, और एक हफ्ते लेकिन जो इंटेंसिटी से जाप किया, घिसाऊ जाप नहीं किया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे, ऐसे नहीं, दम लगा के जाप किया, इंटेंसिटी से जाप किया, अंदर इच्छाओं को मारने, ट्रांसफॉर्मेशन की इच्छा के साथ जाप किया, ठीक है, ये देखते हुए जाप किया कि लोग तो नहीं देख रहे, ठीक है, लोग तो अंधे हैं, कोई नहीं देख रहा मैं कैसा जप कर रहा हूं, लेकिन भगवान देख रहे हैं। और भगवान बोलते हैं ये थामाम प्रपद्यन्ते ताम्स तथैव भजामः, जिस इंटेंसिटी से मेरे पास कोई आता है उस इंटेंसिटी से मैं उसके पास जाता हूं। और भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, ठीक है, तो नाम को हम क्या बोलते हैं, कितना इंडिफरेंस है हमारा एटीट्यूड, उसका हिंदी क्या है, इंडिफरेंस एटीट्यूड मतलब, हाँ जी हाँ, उदासीन, कितने उदासीन हैं हम भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, वो हमारी श्रद्धा दिखाता है। कितने स्पेस्ड आउट हैं हम भगवान के नाम, अगर स्पेस्ड आउट ज्यादा थक गए सो जाएं अच्छा है, ठीक है, और सो के थोड़ा फ्रेश हो जाएं फिर जब करें, क्योंकि सबसे ज्यादा प्राइम टाइम, प्राइम शो होता है ना, प्राइम टाइम हमको जब को देना चाहिए, सबसे प्रायोरिटी उसकी सेट करनी चाहिए, जीवन के प्रायोरिटी में वो होना चाहिए। तो इन्होंने केवल एक हफ्ते जब किया, और एक हफ्ते के बाद खुद भगवान संकर्षण मूर्ति फॉर्म में नहीं, साक्षात दर्शन दिए और अपने पार्षदों के साथ, और फिर उसके बाद में वो उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन था, दर्शन से पहले ही ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका था, लेक्चर सुनते ही उन्होंने धारण किया था, और उनका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा था कि पार्वती जी ने जब उनको, अब मैं वो पूरी स्टोरी में नहीं जाऊंगा, लेकिन जब पार्वती जी ने मिसअंडरस्टैंडिंग करके, बिल्कुल दोष नहीं था, शिवजी बोले हे पार्वती तुमने पूरा तुम्हें शिवजी पहला श्लोक बोलते हैं उसमें, जब शिवजी बोलना शुरू करते हैं पार्वती जी को, चित्रकेतु महाराज चले जाते हैं वहां से, पार्वती जी श्राप दे देती हैं उनको वृत्रासुर बनने का, और चित्रकेतु महाराज चले जाने के बाद शिवजी बोलते हैं हे पार्वती तुम्हें तुम्हारी सुंदरता का बहुत घमंड है। प्रभु लिखते हैं हर स्त्री को घमंड होता है अपनी सुंदरता का, तो प्रभु शिवजी बोलते हैं तुम्हें बहुत सुंदरता का घमंड है, तुम सोचती हो कि तुम, ऑफकोर्स वो हैं मिसेस यूनिवर्स, वो हैं एक्चुअली, ठीक है, मिस यूनिवर्स नहीं, मिसेस यूनिवर्स हैं वो, ठीक है, तो तुम्हें बहुत घमंड है, लेकिन चित्रकेतु महाराज ने अपनी नम्रता से तुम्हें पूरी तरीके से परास्त कर दिया। और फिर बोलते हैं कि चित्रकेतु महाराज की कोई गलती नहीं थी, शिवजी खुद ही बोलते हैं, तब पार्वती जी को पश्चाताप तो होता है, लेकिन बहुत बाण निकल गया एक बार तो, अब क्या, घायल तो हो गया था व्यक्ति तो, लेकिन वो भी चित्रकेतु महाराज के लिए बहुत अच्छा हुआ, खैर उसमें नहीं जाएंगे, पर चित्रकेतु महाराज ने कैसे स्वीकार किया, वहां विलाप ही नहीं किया, सोचिए बच्चे मरने पर इतना विलाप, और खुद पे कर्ज पड़ा तो कोई विलाप नहीं, और जो वृत्रासुर बने तो कितना, कैसे काटा उनका, एक हाथ काटा, दूसरा हाथ काटा, फिर भी लड़ते रहे, फिर एक साल लगा उनके गले को काटने के लिए, और फिर भी कोई मिलाप नहीं, उल्टा बोल रहे थे मारो मुझे, मेरा सब कुछ ले लो। ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है कैसे, भक्ति योग मधोक्ष जी, ये जो डायरेक्ट प्रोसेस है भक्ति योग का, और ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और दूसरा एक और नेक्टर ऑफ डिवोशन में एक आता है उदाहरण, छोटा सा जगह पे प्रभुपाद लिखते हैं, एक ही श्लोक है वो, तो उसमें बोलते हैं कि यहाँ पे रानियों की बात कर रहा हूं मैं, रानियां कैसे रो रही थी, और रानियां भी अभी आपको सबको पता होगा, सुना होगा सबने भारत में, कि जोड़े कहाँ बने होते हैं, ऊपर बने होते हैं, यहां जोड़े नहीं बनते, कितना भी कोई प्रयास करे जोड़े ऊपर बने, तो अगर क्वालिटी, जो क्वालिटी का पति है वही क्वालिटी की उसको पत्नी मिलेगी, जो क्वालिटी की स्त्री है उसी क्वालिटी का उसको पति मिलेगा, कितना कोशिश कर लें कि एक एकदम बकवास है और एक बहुत अच्छा मिले, ऐसा होता नहीं, ठीक है, यहां इंसाफ नहीं होगा लेकिन वहां इंसाफ है, ठीक है। तो रानियां भी ऑफकोर्स चित्रकेतु महाराज की क्वालिटी की थी, तो उन पे भी असर तो हुआ होगा इस प्रसंग का, वो दिया नहीं भागवतम में पर हुआ तो होगा। तो इसीलिए मैं ये उदाहरण मुझे याद आया कि यहां पे कृतद्युति जो कि पहले बोला बहुत बुद्धिमान, ये श्लोक में बोलते हैं बहुत बुद्धिमान थी, ठीक है, मतलब बुद्धिमान जब भागवत बोल रहा है तो बुद्धिमान मतलब आध्यात्मिक बुद्धि भी थी उन्हें। और उसके विपरीत सुभद्रा जी का उदाहरण आता है नेक्टर ऑफ डिवोशन में। नेक्टर ऑफ डिवोशन में बोलते हैं जब अभिमन्यु का देहांत हो गया तो अर्जुन आके भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं कि हे भगवान आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा, अब छोटी बहन थी और जिन्होंने पढ़ा होगा या सुना होगा कृष्ण और बलराम अपनी छोटी बहन सुभद्रा से अत्यंत प्यार करते थे, हर भाई अपनी छोटी बहन से प्यार करता ही है, लेकिन यहां पे भगवान है तो अत्यंत प्यार करते थे और उनका और मामा जो होता है अपने भांजे से बहुत ही प्यार करता है, भात भी दिया जाता है नॉर्थ इंडियंस को पता होगा भात वगैरह, बहुत ज्यादा प्यार का संबंध है वो भांजे का। और यहां पे अभिमन्यु मर गया, मरा ही नहीं, उससे पहले जब लड़ाई से पहले भगवान ने कुंती महारानी को वचन दिया कि तुम्हारे 5 पुत्रों को मैं जिंदा लेके आऊंगा, वहां पे सुभद्रा जी बाजू में खड़ी थी और सुभद्रा जी भी एक्सपेक्ट कर रहे थे मेरा भाई मुझे भी वचन देगा, मेरा भी बेटा वापस आएगा, निग्लेक्ट कर दिया, सोचिए खुद की बहन को निग्लेक्ट कर दिया और कुंती महारानी को बोला तुम्हारे 5 पुत्र मैं लेके आऊंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। इतना होने के बाद अभिमन्यु को किस तरीके से मारा गया, वहां पे अर्जुन बोलते हैं भगवान आपके समक्ष मारे गए, मारा गया अभिमन्यु, लेकिन ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि सुभद्रा जी का प्रेम आपके प्रति थोड़ा भी कम हुआ है, और ये भी मत सोचिएगा कि उसका कलर जो है उसका रंग बदला है, जैसा था प्रेम और जितना इंटेंस था वैसा का वैसा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है भक्ति करने से, जो प्रभुपाद ने दी हुई भक्ति है, जो प्रोसेस प्रभुपाद ने हमको कृपा करके दिया है, जो प्रभुपाद का अपना कंकॉक्शन नहीं है, भागवतम का ही प्रोसेस है, लेकिन उसको हमारे लिए बहुत अच्छे से बना दिया है ताकि हम आसानी से कर सके, मॉर्निंग इवनिंग प्रोग्राम है, बीच में सेवाएं हैं, नाम जप है, इसको अगर हम करते हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एकदम ड्रास्टिक चेंज होता है। और अब ये कैसे चेंज होता है, इसको भगवद गीता में 15वें अध्याय में, ये सृष्टि का 15वें अध्याय के 4 पहले श्लोक मेरे फेवरेट श्लोक हैं, बहुत सुंदर श्लोक हैं, सभी बोलिएगा। भगवान बोलते हैं श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेद वे। तो ये पहले 2 श्लोक का सिर्फ ट्रांसलेशन लेंगे, तीसरे श्लोक का हम पढ़ूंगा नहीं लेकिन आउट ऑफ मेमोरी बताऊंगा कि तीसरे में परपोर्ट में बहुत सुंदर ये प्रोसेस को बताते हैं। तो पहले श्लोक में जो परणानी है, परणानी मतलब लीव्स, तो ये पूरी सृष्टि, ये पूरा हमारा ब्रह्मांड जो है इसको भगवान वहां पे तुलना करते हैं, ये सबको ही पता होगा तो थोड़ा फास्ट जाऊंगा कि ये एक इन्वर्टेड ट्री है, मतलब उल्टा वृक्ष है, तो उल्टा वृक्ष एक्चुअली होता ही नहीं, ठीक है, इसलिए ये फॉल्स है, वहां पे समझाते हैं रूपा कि उल्टा वृक्ष होता ही नहीं, कहां होता है, नदी के बाजू में होता है, तालाब के बाजू में होता है, क्या होता है, परछाई होती है, परछाई में अगर बच्चे ने जंप मारा नीचे आम देख के, अरे आम है जंप मारा तो आम मिलेगा क्या, भागता रहेगा परछाई के पीछे और दूर जाएगा आम, और भागेगा और दूर जाएगा, और भागेगा और दूर जाएगा, वैसे ही हो रहा है यहां पे, आम खाने जा रहे हैं लोग, आनंद चाहिए, आनंद मिलता नहीं, और दूर भागता है और दूर भागता है, 10वीं कर लूंगा तो आनंद मिलेगा, 10वीं में मेरिट आएगा तो आनंद मिलेगा, 10वीं हो जाता है फिर निरानंद, अभी 11वीं करना है, 12वीं के बाद आनंद आएगा, 12वीं के बाद इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग का टेंशन आता है, इंजीनियरिंग के बाद जॉब लगेगा तो जरूर आनंद आएगा, जॉब मिल जाता है आनंद नहीं है, फिर बोलते शादी कर लेगा तो पक्का आनंद आएगा, उसमें आनंद बेटा सेटल हो जाओ, ये जीवन में सेटलमेंट है ही कहां, हमेशा तो अनसेटल नहीं रहते, कब डिवोर्स हो जाएगा मालूम नहीं, पत्नी थोड़ी नाराज होगी, आजकल तो इंडिपेंडेंट है सभी, अरे तू क्या बोलता है हट गई मैं गई दूसरे खसम के पास सॉरी ये लैंग्वेज तो ठीक है ना एनीवेज तो बहुत क्षण भंगुर है ये जीवन, लेकिन फिर आनंद की तलाश, फिर बच्चे हो जाएंगे तो आनंद मिलेगा, बच्चे हो जाते हैं तो वो तो 6 साल के लगे जब उन्होंने नो बोलना शुरू कर दिया, मैंने अभी भी सुना था मायापुर में एक गृहस्थ अभी सन्यासी हो गए महाराज, तो वो बोले सबको मालूम है जो बच्चे जब तक छोटे होते हैं जब तक नो नहीं बोलते, नहीं नहीं बोलते तब तक अच्छा है, जैसे वो नहीं बोलते हैं हमारा दुख का समय शुरू फिर सोचते हैं ठीक है बच्चे के बच्चे होंगे तो अच्छा होगा, तो ऐसे निरानंद घूमते रहता है। तो यहां पर बोल रहे हैं कि ये जो वृक्ष है ये उल्टा वृक्ष है और इसमें जो पत्ते हैं वो पत्ते वैदिक हिम्स हैं या वैदिक कर्म कांडीय विचार जो वेदों में है, ये कर लो तो ये मिल जाएगा, ये कर लो ये यज्ञ अनुष्ठान कर लो ये मिल जाएगा। तो वो इस श्लोक में बोल रहे हैं जो इस वृक्ष को जानता है यस्तम वेद स वेद वेद, जो इसको एज इट इज जानता है कि इसमें दुखी दुख है आनंद कुछ नहीं है और वेदों के कर्म कांड कर लें या कुछ भी कर लें फायदा कुछ नहीं है, वो जानता है इस वृक्ष को ठीक से। फिर नेक्स्ट में बोल रहे हैं अधश्चो च ऊर्ध्वम अप्रसृतस्तस्य शाखा, अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृतस्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः, अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। फिर इसमें और वृक्ष बोलते हैं अधश्च ऊर्ध्वम, अधश्च मतलब नीचे और ऊर्ध्वम इसकी जो शाखाएं हैं वो ऊपर और नीचे सब जगह जा रही हैं जैसे वट वृक्ष की होती हैं, और ये शाखाएं क्या है, ये शाखाएं गुण प्रवृद्धा, ये किससे नरिशमेंट मिल रहा है कैसे इनको पोषण कहां से मिल रहा है, गुण प्रवृद्धा तीन गुणों में ये शाखाएं बंधी हुई हैं, गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, और इन शाखाओं से जो छोटी छोटी और शाखाएं उप शाखाएं निकलती हैं वो विषय प्रवाला, वो विषय हैं विषय वस्तु हैं कि मुझे ये मिल जाए गुलाब जामुन मिल जाए रसगुल्ला मिल जाए ये मिल जाए वो मिल जाए, ये जो विषय हैं ये उनकी। और फिर इसकी और अधश्च मूलानी, और वट वृक्ष में और मूल निकलती हैं आपको पता होगा उसमें से ही उसकी और जड़ें निकलती हैं जो नीचे जाती हैं एक और वृक्ष आता है, तो वो जो मूल है वो नीचे जा रही हैं, मतलब ऐसे वृक्ष पहले नीचे फिर ये जो मूल हैं वो नीचे जा रही हैं, और ये कहां है कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, मनुष्य जीवन में जो कर्म का कर्म करते हैं फ्रूटिव एक्टिविटीज ये मूल उसको जाके एक और वृक्ष बनाती है, मतलब अब ये एक वृक्ष के कई वृक्ष आते हैं हमारा एक एक का, इसका मतलब क्या है इस तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं एक एक का ये पूरा ब्रह्मांड का नहीं एक एक हम वृक्ष हैं, ये शरीर वृक्ष है और ये वृक्ष के छोटे छोटे और वृक्ष कई जन्मों के वृक्ष निकल रहे हैं और वो एक एक वृक्ष एक एक कर्म से निकल रहे हैं, हमने कर्म कांड लिया एक्टिविटी की फिर इंद्र बने एक और वृक्ष निकला, फिर हमने कुछ किया और एक वृक्ष निकला एक और वृक्ष, ऐसे कई वृक्षों के जो संस्कार हैं वो हमारे मन में बैठे हुए हैं, इसलिए इनको तोड़ के भगवान की चिंतन करना बड़ा मुश्किल है हमको, जब के समय पे बहुत कुछ याद आता है आपको पता होगा ऐसी ऐसी चीजें याद आती होंगी अगर आपका अनुभव है जो इस जन्म में हमने एक्सपीरियंस नहीं की, सवाल ही नहीं है अरे यार ये एक्सपीरियंस कहां से आया, वो एक्सपीरियंस कहां का है दूसरे जो वृक्ष हमने उगाए थे अलग अलग पिछले जीवनों में जिनकी हमको याददाश्त नहीं है वो हमको सताते हैं, इसलिए अटैचमेंट बहुत गहरा है और इस अटैचमेंट को काटने के लिए अगले दो श्लोक हैं बहुत ही अच्छे श्लोक हैं इनको जरूर बोलिएगा, न रूपमस्य हततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। तो इसमें बोल रहे हैं न रूपम अस्य, इस भौतिक जगत में एक व्यक्ति इस वृक्ष के रूप को नहीं देख सकता, क्यों नहीं देख सकता प्रभुपद तात्पर्य में समझाते हैं, क्योंकि हम इस दो तरीके से इसको समझाते हैं प्रभुपद एक दूसरी जगह पे लेक्चर में समझाते हैं, किसी चीज के आप बहुत पास में खड़े हो, मान लीजिए ये दीवार है आपने दीवार कभी देखी नहीं, दीवार के और ये दीवार नहीं बहुत बड़ी दीवार है, ये दीवार के आप बहुत पास खड़े हो तो देख पाओगे कि आप कैसी दीवार है, दीवार से दूर जाएंगे तो दीवार पूरी दिखेगी अच्छा दीवार है। दूसरा समझाते हैं कि ये वृक्ष के एक एक टहनी में हम घुस के उसी गुत्थी में लगे हुए हैं, एक एक कर्म में ही लगे हुए हैं, तो पूरे वृक्ष को नहीं देख पा रहे कि ये वृक्ष कहां है, इसका असली भाग तो असली वृक्ष तो आध्यात्मिक जगत में ही देख नहीं पाते। सॉरी, तो इसको करना क्या है, ये जो वृक्ष है ये कैसा है उसमें समझाते हैं, लेकिन करना क्या है लास्ट में बोलते हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, डिटैचमेंट के साथ, चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, सबको अटैचमेंट है, ठीक है, लेकिन हमको करना क्या है, डिटैचमेंट के साथ समझते हुए ये चीजें असल में आत्मा से कोई संबंधित नहीं है। तो जितना चाहिए उतना लें, ज्यादा ना लें, या दूसरी तरीके से बोले हम इतना इकट्ठा करते हैं तो धीरे धीरे थोड़ा कम करें, एकदम से छोड़ नहीं सकते, मर जाएंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कम करें, थोड़ा थोड़ा कम करें। प्रभुपाद बोलते हैं अगर 6 गोस्वामियों को हमने कॉपी करने की कोशिश की तो एक सेकंड भी जिएंगे नहीं, तो एकदम से जंप मारेंगे तो बड़ा मुश्किल है, ऐसे गिरेंगे, ऐसे मुक्की खाएंगे कि कभी नहीं उठ पाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा, भक्ति योग का प्रोसेस ऐसा पावरफुल है कि हमको डिटैचमेंट अपने आप ही देगा, कृत्रिम रूप से करने की जरूरत नहीं है। तो ये डिटैचमेंट के साथ इसको छित्वा, इस वृक्ष को काटना है, फिर क्या करना है नेक्स्ट में बोलते हैं, ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गतानां निवर्तन्ति भूयः। इसका मतलब ततः पदम, अब इसको काटने के बाद क्या करना है, वहां जाना है, उस पद को प्राप्त करना है भगवान के चरण कमलों को, जहां पे जाने के बाद वापस नहीं आते, और वहां पे जाके क्या करना है, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, वहां जाके बैठना नहीं है, केवल भगवान के चरण कमलों की सेवा करनी है, फुल सरेंडर कर देना है, तुरंत जप मारना है, दंडवत करना है, बोलना है व्हाट कैन आई डू, किम करोमि, क्या करूं, और सेवा करनी है। और यतः प्रवृत्ति ही प्रसुरता पुराणी, तो इसको बोलते हैं प्रभुपाद इस आखिरी लाइन को, यतः प्रवृत्ति प्रसुरता पुराणी, कि इस श्लोक में आध्यात्मिक जगत क्या है, भगवान कौन है, उसका डिस्क्रिप्शन है। यतः प्रवृत्ति ही प्रसुरता पुराणी, जिनसे, यतः मतलब उनसे, जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड आध्यात्मिक और भौतिक ये ब्रह्मांड आए हैं और फैल रहे हैं, उनकी चरण कमलों की शरण लेनी है। क्यों? क्योंकि वही शरण देने लायक व्यक्ति हैं, और उनकी शरण लेने के लिए प्रभुपाद बोलते हैं क्या करना है, तात्पर्य में इसको ब्रीफ में डिस्कस करके फिर समाप्त करेंगे। प्रभुपाद बोलते हैं जब भगवान की प्रभुपाद इसको बोलते हैं असंगेना, असंगता कैसे प्राप्त होगी, जब हम ऐसे भक्तों के संग में आएंगे, और संग में आना मतलब उनसे सुनेंगे जो डिटैच्ड है, एक चीज, दूसरी चीज जिनको भगवान के बारे में जानकारी है कम से कम हमसे ज्यादा, ऐसे भक्तों के संग में आके करना क्या है, सुनना है और डिस्कशन करना है, तुष्यंती च रमंती च, जब चरवण करेंगे उसका, ये भागवतम के सागर का जब हम मंथन करेंगे तो उसमें से हमको अमरता का अमृत प्राप्त होगा, हम इमोर्टैलिटी प्राप्त करेंगे, लेकिन मंथन नहीं करेंगे, या मंथन थोड़ा ज्यादा ही कर देंगे तो विष निकलेगा, मतलब क्या है, बाल की खाल ज्यादा निकालने लगेंगे तो भी विष निकलेगा, इसको बैलेंस करना होगा, मंथन करना है उसका, इसलिए मंथन करना है कि हमको भगवान से प्रेम बढ़े, भगवान से याचना करने के लिए, भगवान ये मन, ये पूरा जो समस्या है ये मन की समस्या है। 11वें स्कंद में अवंती ब्राह्मण बोलते हैं नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा गृह कर्म कालह मनह परम कारण मामनंती संसार चक्रम परिवर्त येदियत, कि मैं जानता हूं अवंती ब्राह्मण को पूरा दुख मिला, बहुत दुख मिला, जिन्होंने पढ़ा होगा उसके बाद उनका रियलाइजेशन था, बोले मेरे सुख दुख का कारण ना तो नायम जनों में, ना तो ये जन है, लोग नहीं है, मेरे परिवार जन नहीं है, लोग जो मेरे को पत्थर मार रहे हैं वो नहीं है, नायम जनों में सुख दुख के हेतु न देवता न आत्मा, न मैं खुद आत्मा वो भी जिम्मेदार नहीं है, न देवता, न ग्रह कर्म कालह, ग्रह भी जिम्मेदार नहीं है, वहां पर ग्रह का तो बहुत अच्छा बोलते हैं जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर है, मतलब जिनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान है, वो बोलते हैं ग्रह तो आपस में झगड़ा करते रहते हैं, वो हमारे क्या नुकसान करेंगे। बड़ा अच्छा चीज वहां पर श्लोक में बोलते हैं कि ग्रह क्या नुकसान कर सकते हैं। तो ये सब नहीं, क्या कारण है, मनः परम कारण मामंती, मन जो है हमको ये संसार का रिफ्लेक्शन दिखाता है, मन बोलता है ये बुरा है ये अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं है कुछ बुरा नहीं है, मैं तो ट्रांसेंडेंटल हूं, मेरे लिए क्या अच्छा क्या बुरा, मैं यहां का हूं ही नहीं, लेकिन मन बोलता है तू यहां का है, बार बार बोलता है, लेकिन अभी समस्या क्या है, बड़ी समस्या है। भगवान क्या बोलते हैं, भूमिर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति। किसकी शक्ति है ये? भगवान की। हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? कुछ सवाल ही नहीं है भगवान की शक्ति को कंट्रोल करने की। हम सोचते हैं हमको मन में को वश करना है। यहां पे अवंती ब्राह्मण भी बोलते हैं जिसने मन को वश में कर लिया, लेकिन लास्ट में बोलते हैं एताम सास्थाय परात्मनिष्ठा, उस तरीके से कंट्रोल करना है जैसे बोला गया है, जैसे पूर्व महर्षियों ने किया है। वो क्या है? भगवान से याचना करती है, हे भगवान आपका मन है, मैं क्या करूंगा, करो ना। फिर भगवान बोलेंगे तूने बिगाड़ा ना ये मन को, तूने बोला था ना, इच्छाएं तेरी थी, मैंने फुलफिल किया। लोग जो ब्लेम करते हैं, प्रहलाद महाराज बोलते हैं भगवान आप तो कल्प वृक्ष के समान हो। व्यक्ति आएगा बोलेगा मेरे को नींबू चाहिए, नींबू दोगे? आम चाहिए, आम दोगे? बोलेगा मेरे को गू चाहिए, गू दोगे? खा। लेकिन फिर रो मत। यहां पे समस्या क्या होती है, वो नहीं देखते भगवान। भगवान हम बड़े दयालु हैं, हालांकि भगवान को पता है कि यह चीज इसके लिए अच्छी नहीं है, फिर भी भगवान पत्थर, भगवान नॉर्मल पिता जैसे नहीं। पिताजी से हम चॉकलेट मांगते हैं, कई बार पिताजी के पास पैसा ही नहीं होता, चॉकलेट देंगे कैसे, तो डांटते हैं नहीं दूंगा चॉकलेट। लेकिन भगवान ऐसे नहीं, कभी भी कुछ भी मांगो दे देंगे। बोलते भी हैं मत कर, साधुओं से बुलवाते हैं मत ले, लेकिन फिर चॉकलेट खाएगा तो दांत में कीड़े लगेंगे, क्या कर सकते हैं, फिर रोएगा। फिर डॉक्टर के पास भी भगवान लेके जाते हैं, सोचिए कितने कृपालु हैं, उसका इलाज भी करते हैं, डेंचर भी लगवा देते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर सुधर जा। तो करना क्या है इसके लिए बहुत जरूरी है, याचना करने के लिए जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रोसेस दिया है। ये एक सॉन्ग है, ये बहुत लोग हमारे प्रभु जी बोलते बोलते नाम भूल जा रहा हूं, यदि ते हरि पाद सरोज सुधा, मधुआ प्रभु जी, मधुआ प्रभु जी गाते रहते हैं नहाते वक्त वगैरह। तो इसमें से एक स्टैंजा है, इसको मेरे पीछे अगर गा सकते हैं तो गाइएगा, बहुत अच्छा है। मैं बोल देता हूं पहले, कली कुकुर मुदगर भाव धर्म हरि नाम महौषध दान परम पतितार्थ दयार्थ सुमूर्ति धर्म भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम। कि उन गौरांग महाप्रभु जो नव गोद्रुम द्वीप के जो कानन है, गोद्रुम द्वीप के जो गार्डन है, उनमें उगता हुआ एक चांद है, गोद्रुम चंद्रोदय है, और वो चंद्र के भजित गोद्रुम कानन कुंज विधुम, ये लास्ट लाइन है। और वो कौन है? कली कुकुर मुदगर भाव धर्म, उन्होंने एक मुदगर एक एक क्या बोलते हैं गदा हाथ में ले रखा है, और कली के कुत्ते को या हमारे मन के कुत्ते को, कली कुकुर मुदगर भाव धर्म, उन्होंने भाव लिया है कि हमारे कलियुग के जो संस्कार है उनको ठोक ठोक के भगा देंगे, उनकी शरण लो। और वो कैसे शरण लेनी है? हरि नाम महौषध दान परम। उन्होंने हमको शरण लेने के लिए एक ही प्रोसेस दिया है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम। या जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसको पुकारेंगे तो वो मुदगर लेके उसको मार देंगे। ध्यान रखिए, हरि नाम लेने से हमारा उद्धार नहीं होगा, हरिनाम इस भाव से लेंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, वो कृपा करके मुदगर उठा के मारेंगे तब होगा। हम हरिनाम लेंगे क्या? हम इतने तुच्छ हैं कि भगवान का नाम हमारी जबान में फिट नहीं होता। भगवान बहुत विशाल है, लेकिन भगवान ने बोला है कि बेटा ले, मैं कर दूंगा उद्धार, इसलिए तो ये याद रखना है। और फिर बोलते हैं पतितार्थ दयार्द, और वो क्यों कैसे मारेंगे, क्यों मारेंगे? क्योंकि पतितार्थ जो आर्त हैं, जो दुखी हैं, जो गिरे हुए, जो समझते हैं मैं गिरा हुआ हूं, मैं दुखी हूं, और अब मुझे सुखी करो भगवान। वो क्या है? हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपावलोकन करो आमी बड़ो दुखी। जो हंसते हैं माया में उनको नहीं होगा, जो दुखी समझते हैं, जो बोलते हैं हंसो भक्ति मिल गई, हम हंसो यार भक्ति मिली क्या, या तूने ली क्या, भक्त बन गया क्या, शुरुआत की अभी। तो एक बार एक लेक्चर दे रहा था तो एक प्रभुपाद डिसाइपल माता जी ने पूछा था, प्रभु जी भगवद गीता में बोला है सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ऐसा तो लगता नहीं। बोला माता जी सही है, हमारे लिए नहीं बोला है वो। अभी हम साधन भक्ति में, लेकिन फिर भी उस जीवन से तो ज्यादा सुख है ना। प्रभुपाद बोले मटीरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल, स्पिरिचुअल लाइफ इज डिफिकल्ट ऑल्दो, लेकिन मटीरियल लाइफ तो इम्पॉसिबल है। तो इसको एक बार गाएंगे, कि भगवान पतितों के ऊपर दयार्द्र करते हैं सुमूर्ति धर्म, और ऐसी सुंदर मूर्त लेके भगवान चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ है। तो इसको भी जरा मेरे पीछे गाइएगा। कली कुकुर मुद्गर भाव धर्म, कली कुकुर हरि नाम महौषध दान परम, हरि नाम पतितार्थ दयार्द्र सुमूर्ति धर्म, पतितार्थ दयार्द्र सुमूर्ति धर्म। भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम, भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम, भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम, भज कुंज विधुम, भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम, भज कुंज विधुम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर नाम संकीर्तनम की, युगावतार चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की, शिला प्रभुपाद महाराज की, निताय गोप्रमानंदे।